रोमियो को लिखी हुई पत्री 16वां अध्याय। अध्याय 16 उनके लिए अभिवादन का अध्याय है जो रोम में थे। हम जल्दी से देखेंगे कि पौलुस किन किन के लिए क्या क्या निर्देश देता है। सबसे पहले तो फीबे के लिए कहता है, जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है, उसे प्रभु में ग्रहण करो। किंखिया कुरिंथ का बंदरगाह था। इसमें शक नहीं कि उसकी भेंट पौलुस से उस समय हुई होगी जब वो कुरिंथ की कलीसिया में सेवकाई कर रहा था। अब बात यह थी कि फीबे चूंकि सेविका थी, इसलिए कुछ रूढ़िवादी सेवकों को एतराज था। आगे, तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि फीबे उनके साथ जा रही थी जो कुरिंथ से रोम का पत्र ले जा रहे थे, इसलिए वह उसे सिफारिशी पत्र देता है। आगे, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है नमस्कार कहना। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। प्रिस्किला और अक्विला तो यूं ही घुमक्कड़ थे। उनसे हमारा पहली बार सामना उस समय हुआ जब पौलुस कुरिंथ में आया था और उनका धंधा तंबू बनाना था, और चूंकि पौलुस भी एक तंबू बनाने वाला था, इसलिए वो उनके साथ कुरिंथ को गया और उनके साथ तंबू बनाकर बेचने और इस प्रकार अपनी सेवकाई को शुरू करने लगा। आपको स्मरण हो कि जब पौलुस उनके साथ कुरिंथ में था, तब वे रोम से आए थे, क्योंकि क्लौदियुस रोमी राजपाल यहूदियों को सता रहा था। इसलिए पहले तो वे रोम में थे, और इसमें शक नहीं कि उनके अपने धंधे थे, परंतु जब क्लौदियुस ने उन पर जुल्म ढाना शुरू किया, तब बहुत से यहूदी रोम छोड़कर कुरिंथ में आ गए थे। कुरिंथ में उनकी भेंट पौलुस से हुई और वे विश्वास में दृढ़ किए गए, और इसके पहले कि पौलुस इफिसुस को जाए, वे पहले ही इफिसुस में जाकर बस गए थे। इफिसुस में जब अपुल्लोस आया, जो पवित्र शास्त्र को गहराई से जानता था और लोगों में यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, तो प्रिस्किला और अक्विला ने उसके प्रचार को सुना और उसे अलग ले जाकर परमेश्वर का काम समझाना आरंभ किया, क्योंकि उसने केवल यूहन्ना के बपतिस्मे को जाना था। एक बार पुनः पौलुस की भेंट प्रिस्किला और अक्विला से इफिसुस में हुई, जहां उसने उनके साथ वचन की सेवा की। अब वे वापस रोम को गए, और ये वही समय था जब पौलुस ये पत्र लिख रहा था, और इस प्रकार से वे अति निकट के सहकर्मी एवं मसीह में मित्र बन गए थे, और रोम में पौलुस उन्हें लिखता है। अंतिम बार हम उन्हें वापस इफिसुस में पाते हैं। वे जगह जगह जाकर प्रचार करते थे, और हम पढ़ते हैं कि इफिसुस में उनके घर में कलीसिया चलाई जाती थी, और पौलुस उस कलीसिया का अभिवादन करता है जो उनके घर में थी। जहां कहीं वे गए, उन्होंने अपने घर खुले रखे और लोगों को निमंत्रण देते थे कि उनके यहाँ आए और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। उनका घर विश्वासियों के लिए मिलने का स्थान बन गया था, और प्रमाणिक रूप से वे अत्यंत उदार और असाधारण लोग थे, और मैं वास्तव में प्रिस्किला और अक्विला से भेंट करने की लालसा कर रहा हूँ। संसार में इस प्रकार के लोग भी हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो उनसे मिलने में बड़ा आनंद आएगा। 5वीं आयत से आगे, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनेतुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। मैं नहीं जानता कि वह कौन थी। आगे लिखा है, अंद्रुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह ही हुए, नमस्कार। अब यूनियास तो स्त्रीलिंग नाम है। पौलुस घोषणा करता है कि वह भी एक प्रेरित है। यह एक बात है जिसे शायद आप माने या न माने, परंतु पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी प्रेरिता के पद प्राप्त थे। अब इसे अनुवाद करने का एक और तरीका है कि इसे आदर्शपूर्ण तरीके से लें। अंद्रुनिकुस और जूनिया, जो मेरे रिश्तेदार और संगी कैदी हैं, जो प्रेरितों में नामी हैं, अथवा जिन्हें प्रेरित जानते हैं, जो कि प्रेरितों के नाम से जाने जाते हैं। यह नहीं कि वे नामी गरामी प्रेरित हैं, परंतु वे प्रेरितों द्वारा जाने जाते हैं, और इस ढंग से लोग इसका अनुवाद किया करते हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो स्त्रियां हैं। दूसरे प्रेरित जो मुझसे पहले मसीह में थे, वे पत्रस यूहन्ना को प्रेरित बताते हैं। अब इसके लिए आपको यूनानी भाषा का सहारा लेना होगा, क्योंकि नया नियम यूनानी में लिखा गया था। इसके द्वारा हम सही मायने में जान सकेंगे। यूनानी में यूनियास या जूनिया वास्तव में एक प्रेरित थी, एक जानी मानी प्रेरित, जिसे प्रेरित पौलुस नमस्कार कहना चाहता है, जो पौलुस से पहले मसीह में थी। आगे अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में मेरा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। अपिलेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिसुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिय पर्सिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। असुनक्रितुस और फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उसके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलिलुगुस और जूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उसके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। मेरे लिए ये दिलचस्प बात है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर अभिवादन की विभिन्न प्रथाएं होती हैं। कुछ समय पहले हम मेक्सिको गए थे। वहां अभिवादन करते समय पुरुष पहले हाथ मिलाते हैं, फिर सीने से लगाते हैं और दोबारा हाथ मिलाते हैं। इसलिए यदि आप वहां जाते हैं तो भाइयों का अभिवादन करते समय आप उनसे पहले हाथ मिलाइए, तब फिर उनका आलिंगन कीजिए और फिर दूसरी बार उनसे हाथ मिलाइए। जब आप इटली में जाते हैं तो वहां वे आपके गाल पर चूमकर आपका अभिवादन करते हैं। अभी भी रोम में गालों पर चूमकर अभिवादन किया जाता है। पौलुस रोमियों की कलीसिया को ऐसा करने को कहता है। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। 17वीं आयत। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हमेशा ही ऐसे लोग पाए जाएंगे जो मसीह की देह पर दाग लगाने वाले होते हैं, जो छल कपट की बातें करते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से उनका यह कर्तव्य है कि मसीह की देह अर्थात कलीसिया में विकृत बातों को डालें। अब मैं सोचता हूं कि यदि परमेश्वर ने आपको पवित्र शास्त्र की विशेष समझ दी है, कोई गहरी बात जो कि निराली और भिन्न है, परंतु परमेश्वर ने आपको ही दी है और ये आप ही समझ सकते हैं और संपूर्ण कलीसिया को ठीक समझाने का प्रयास करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आपके लिए अच्छा होगा कि सबसे पहले तो इस समझ का सावधानी से अवलोकन आप कर लें कि आपने किस प्रकार और क्यों इसको पाया। क्योंकि कई बार ऐसी बातों से गलत शिक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वालों को बहका देते हैं। ऐसे लोगों को पहचान लो जो फूट एवं विभाजन एवं मतभेद उत्पन्न करते हैं और धर्म सिद्धांत की विरोधाभासी शिक्षा देते हैं। बाइबल के बुनियादी धर्म सिद्धांत जिन्हें तुम्हें सीखा है, इसलिए उन्हीं पर चलो और किसी झूठी शिक्षा से बचे रहो। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। यह एक अच्छा नियम है। उन बातों में बुद्धिमान बनो जो भली हैं, परंतु जो बातें बुरी हैं उनमें गूंगे बने रहो। जब मैं सेमिनारी में था तब कुछ लड़के एक नाट्यशाला में गए क्योंकि उन्हें यह जानना था कि इसके विरोध में क्या प्रचार करना है। मैंने कहा, अब यह तो मूर्खतापूर्ण है। क्या हमें बुराई का विरोध करने, उसकी हानियां बताने के प्रचार या उपदेश देने को सीखने के लिए सारी बुराई में घुसकर उसको समझना चाहिए? कभी नहीं। जो भला है उसके प्रति बुद्धिमान बने रहो, परंतु जो बुरा है उसके प्रति भोले बने रहो। परमेश्वर को उस मन मस्तिष्क के लिए धन्यवाद जो उन बातों के प्रति जो कि बुरी हैं मुझे रोकती हैं। और आगे, और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आमीन। इस पत्री को समाप्त करने में पौलुस को बड़ी कठिनाई हुई थी। अब यहां वह दूसरी बार आमीन कहता है। मेरे सहकर्मी तिमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लुकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। और आगे, मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। क्या आपको स्मरण है कि पौलुस गलातियों की पत्री की ओर ध्यान दिलाता है? क्या तुम्हें याद है कि मैंने अपने ही हाथ से तुमको एक लंबा पत्र लिखा था? अभी तक तो पौलुस अपनी अधिकांश पत्रियों को बोलकर दूसरों के द्वारा लिखवाता रहा था। तिरतियुस वह व्यक्ति था जिससे पौलुस ने इस पत्री को लिखवाया था, परंतु वह भी उन्हें नमस्कार कहता है। और 23वीं आयत में गयुस, जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। ये वही गयूस है जिसे कुरिंथ में पौलुस ने बपतिस्मा दिया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि गयूस और क्रिस्पुस को छोड़ मैंने और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। गयूस न केवल मेरा मेजबान है पर पूरी कलीसिया का है, तुम्हें नमस्कार कहता है। और आगे इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वार्तुस का तुमको नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे, आमीन। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यत वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। इस प्रकार विश्वास की आज्ञाकारिता के द्वारा सब जातियां परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकती हैं। यह बस मात्र यहूदियों के लिए ही उद्धार पाने का मार्ग नहीं परंतु विश्वास की आज्ञाकारिता के द्वारा सब मनुष्यों के लिए द्वार खुला हुआ है। केवल एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के द्वारा सदालों होती रहे। इस प्रकार रोमियो को लिखी पौलुस की पत्री का अंत होता है। क्या है विस्मयकारी आश्चर्यजनक पुस्तक। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे और अपने प्रेम में बनाए रखें और होने दें कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसके प्रति ज्ञान से भरपूर होते जाएं और उसका वचन आपके साथ सदा बना रहे, आमीन।